इसके पहले हम लोग सुदामा चरित का श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे, तब तक एक बार की घटना है कि एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा। उस सूर्य ग्रहण का पता ज्योतिषियों के द्वारा पहले ही लग गया था, इसलिए लोग अपने कल्याण के उद्देश्य से पूर्ण उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में जाने लगे। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को छत्रहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे, और उसके प्राश्चित के लिए सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम वहाँ यज्ञ किए थे। यद्यपि भगवान परशुराम के लिए यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहाँ यज्ञ किए, तो उस स्थान को समंत पंचक तीर्थ कहते हैं। वहीं पर ब्रह्म सरोवर है, तो समंत पंचक क्षेत्र में स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य लाभ होता है, यह जानकर देश के कोने कोने के लोग वहां उपस्थित होते हैं। इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र पहुंची। जादवों में कुछेक को छोड़कर प्राय सभी लोग कुरुक्षेत्र आए, उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े लोग आए। मुख्य रूप से अनिरुद्ध और कृतवर्मा जैसे महान सेनापतियों को छोड़कर द्वारिका के प्राय सभी लोग आ ही गए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध बहुत बड़े वीर थे, उनके साथ सुचंद, सुख, सारण कुछ सैनिक द्वारिका के रखवाली के रुक गए। तो जदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र की यात्रा की इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि बहुत सुंदर स्वभाव के परम तेजस्वी जदुवंशी, गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों की हार, बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित होकर बहुत सुंदर लग रहे थे। जदुवंशी लोग जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो संयम पूर्वक स्नान किए और ग्रहण के उपलक्ष में निश्चित काल तक उपवास किए, फिर ब्राह्मणों को गाय दान किए, भगवान परशुराम के बनाए हुए कुंडों में विधि पूर्वक स्नान किए। इसके बाद सतपात्रों को, ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराए, फिर ब्राह्मणों की अनुमति से स्वयं भोजन किए। विश्राम कर लेने के बाद जदुवंशी लोग अपने सुहृद संबंधियों से मिलना जुलना प्रारंभ किए। जब भोजन कर लिए तो वहाँ उस कुरुक्षेत्र में जो सुंदर वृक्ष थे, उन वृक्षों के छाया में बैठ कर विश्राम किए, वहीं पर डेरा डाले थे, अपना टेंट लगाए थे। इसके बाद अपने सगी संबंधियों से मिलने लगे। तो जादवों के संबंधियों में मत्स्य, उशिनर, कोशल, विदर्भ, कुरु, सिंजय, काम्भोज, कैकय, मद्र, कुंती, अनर्थ, केरल और अनेक देश के लोग आए थे। विपक्ष के लोग भी थे, शत्रु पक्ष के भी सैकड़ों नरपति आए थे। सब लोगों से बारी बारी से मिले। इसके अतिरिक्त जदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद बाबा अपने गोप गोपियों के साथ आए थे। भगवान के दर्शन के लिए चीर काल से उत्कंठित थे ब्रजवासी, वे लोग भी ग्रहण के बहाने अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सबको बहुत आनंद हुआ, सभी के हृदय कमल खिल गए। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाए, उनके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। पुरुषों की तरह स्त्रियां भी आपस में मिल रही थीं, अत्यंत स्नेह सौहार्द से एक दूसरे को अखबार देती थीं। तो वहाँ जो बड़े बूढ़े थे उनको सम्मान किया गया, छोटे अवस्था के लोग बड़े बूढ़ों को प्रणाम किए, फिर एक दूसरे का स्वागत सत्कार करके कुशल मंगल पूछकर आपस में चर्चा करने लगे। उनके चर्चा का मुख्य विषय श्री कृष्ण थे। कुंती, वसुदेव आदि आपस में मिले। कुंती देवी अपने भैया वसुदेव से जब मिली तो अत्यंत कातर होकर बोलने लगी, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साध पूरी नहीं हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय भी मेरी सुधि नहीं लिए, इससे बढ़कर क्या दुख की बात हो सकती है। भैया विधाता जब बाएं हो जाता है तो इसी प्रकार अपने सगे संबंधी भी भूल जाते हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वसुदेव जी कहते हैं कि बहन इस प्रकार उलाहना मत दो, हमसे बिलग मत मानो। देखो बहन, कंस के सताए हुए हम लोग इधर उधर अनेक देशों में भागे हुए थे, आज अपने संबंधियों के साथ मिलन हुआ, भगवान की कृपा से फिर हम एक साथ हुए। आप तो जानती हो कई वर्षों तक मैं कंस के कारागृह में रहा, भला बताओ कैसे मैं तुम्हारी सुधि ले सकता। लेकिन समय बदला, हम लोग एक साथ हुए, आज भेंट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार वसुदेव जी बड़े ही सौहार्द से कुंती को समझाए। इसके साथ यदुवंशी लोग पूर्ववंशी वीरों से मिलते हैं, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, महाराज युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि सब मिलते हैं आपस में। इन कुरुवंशियों के बीच में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महाराज नग्नजीत, पुरुजीत, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मद्र नरेश, केकई नरेश, युधामन्नु, सुशर्मा, बालिक सभी लोग उपस्थित थे और सब लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके और उनके रानियों का दर्शन करके विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे। उन लोगों ने मुख्य रूप से उग्रसेन जी को संबोधित करके कहने लगे, हे भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन सफल है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। जद विश्रुति सुति नुते दमलम पुनाति पादावने जनपयस्य वचस्य शास्त्रम भूकाल भर्जित भगा पियदंग्रि पद्म स्पर्शोत्थ शक्तिरभि वर्षति नोखिलार्थान। हे भोजराज, वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल गंगा जल, उनकी बाणी भगवत गीता, उनकी कीर्ति श्रीमद् भागवतम इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है, अभी इसी जीवन की बात है कि समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर अपनी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का कृष्ण के साथ गोत्र का संबंध है, आप हर समय श्री कृष्ण का दर्शन स्पर्श प्राप्त करते हैं, उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, यूं तो आप लोग घर गृहस्थी के झंझट में फंसे रहते हैं जो वास्तव में नरक का मार्ग है, लेकिन आप लोगों के घर में जब सर्व व्यापक भगवान मूर्तिमान रूप से निवास कर रहे हैं, जिनके दर्शन से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषाएं मिट जाती है, केवल भगवत प्रेम की लालसा रह जाती है, उन प्रभु का आप नित्य निरंतर दर्शन कर रहे हैं। तद दर्शन स्पर्शनानुपथ प्रजल्प सय्यासनासन यौन सपिंड बंध जैसाम गृहे निरय वर्तमनि वर्तताम वह स्वर्गा पवर्ग विरम स्वयमास विष्णु। तो इस प्रकार सभी नरपति उग्रसेन जी के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण बलराम यहाँ पधारे हैं, तो वे गोपों के साथ अनेक गाड़ियों पर भेंट की सामग्री लादकर कुरुक्षेत्र में पधारे। नंद आदि गोपों को देखकर सभी के सभी यदुवंशी आनंद से भर गए। इस प्रकार उठकर खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राण का संचार हो गया। परस्पर एक दूसरे को प्रणाम आलिंगन आदि करने लगे। वसुदेव जी अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल हो गए, अपने लाडले लाल को गोद में लगा लिए, हृदय से लगा लिए। अपने पुत्र को प्राप्त करके नंद बाबा विह्वल हो गए। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने माता जसोदा और नंद बाबा के हृदय में लग गए, झुक कर चरणों में प्रणाम किए, नंद बाबा खींच कर हृदय से लगा लिए। इस प्रकार दोनों भाइयों का गला रुंध गया, कुछ बोल नहीं पाए। महाभागवती जसोदा और नंद बाबा दोनों पुत्रों को अपने गोद में बिठा लिए और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किए। उनके हृदय में चीर काल तक न मिलने का जो दुख था वह मिट गया। बड़े आनंद से अपने बच्चे को गोद में चिपका लिए। रोहिणी और देवकी ने ब्रजेश्वरी जसोदा को अपनी अखबार में भर लिया। जसोदा ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भर गया। वे कहने लगी, रानी जी, आपने और ब्रजेश्वर नंद ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। जिस समय कृष्ण और बलराम ने अपने माँ बाप तक को नहीं देखा था, उस समय आपने इन दोनों को खिलाया पिलाया, दुलार किया, रिझाया, इनके मंगल के लिए अनेक प्रकार के उत्सव किए। वास्तव में सच पूछिए तो आप ही लोग इनके माता पिता हैं। आप लोगों के देख रेख में इन्हें किसी की भी आँच नहीं लगी, ये सर्वथा निर्भय रहे। वास्तव में यह व्यवहार आपके ही अनुरूप है। सचमुच आप लोग परम संत हैं, आप ही इनके वास्तविक माता पिता हैं। इस प्रकार रोहिणी और देवकी ब्रजेश्वरी नंदरानी जसोदा से अपने कृतज्ञता को व्यक्त कर रही हैं। गोपियाँ जो बहुत दिनों तक कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई थी और दिन रात कृष्ण के चिंतन में उनका जीवन बीतता था, वो जब श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त की तो मन ही मन अपने हृदय में प्राप्त करके आलिंगन की, तन्मय हो गई और उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। उनके मन में बहुत लालसा थी कृष्ण को देखने के लिए और वह लालसा पूर्ण हो गई और वे एक जोगियों की तरह समाधि में हो गई। जब भगवान कृष्ण देखा कि गोपियाँ मुझसे तदात्म को प्राप्त हो गई, तब वे एकांत में गए उनसे मिलने के लिए और एकांत में गोपियों को प्राप्त करके भगवान हृदय से लगाए, कुशल मंगल पूछे और हंसते हुए बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए। तुम्हारी जैसे प्रियसियों को छोड़कर हम शत्रुओं के नाश में उलझ गए। बहुत दिन बीत गया, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण करती थी? मेरी प्राण प्रिय गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गया कि मैं अकृतज्ञ हूँ? ऐसा समझ करके मुझसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? सखियों, मेरे प्राण प्रेयसियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों का मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, इस प्रकार सभी प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन जिस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे प्रेम किया वैसा किसी ने नहीं किया। देखो, ऐसे तो सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित है और आत्मा भोक्ता के रूप में अथवा जीव के रूप में स्थित है, परंतु मैं इन सब से परे अविनाशी सत्य हूँ और ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत होते हैं। मेरी प्यारी गोपियों, तुम लोग कृपा करके इसी प्रकार मेरा स्मरण करती रहो, मुझसे प्रेम करो, अपना मन इसी भांति मुझ में लगाए रखो, मेरे प्रति दोष बुद्धि मत करना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस प्रकार गोपियों के प्रति बोल रहे थे तो गोपियाँ बोल उठी जो सदा सर्वदा कृष्ण का चिंतन किया करती थी। वे कहने लगी, आहुष्यते ननिन नाभ पदारविंदम जोगेश्वरै हृदि विचिन्त मगाध बोधै संसार कूप पतितो तरणावलम्बम गेह जुषामपि मनसुदियात् सदा नः। हे कमलनाभ, हे श्याम सुंदर, बड़े बड़े बोध संपन्न जोगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। हे मेरे प्रियतम श्याम सुंदर, हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। हे प्रियतम, अपना यह चरण कमल हमारे समक्ष उपस्थित कीजिए, ब्रज में ले चलिए। जिस चरण कमल को देखकर हम घर गृहस्थी के झंझट में भी आपका स्मरण करती रहे। आपका चरण कमल ही वास्तव में इस संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार गोपियाँ एकांत पा करके भगवान से ब्रज में जाने के लिए निवेदन करने लगी। भगवान श्री कृष्ण बलराम को प्राप्त करके देख करके गोपियों को ब्रज याद आने लगा। कि यह प्रियतम ब्रज में रहते कितना सुख मिलता था। तो फिर से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप ब्रज में चलिए, अपना चरण कमल वहां प्रकट कीजिए, हम वहां आपके चरणों का दर्शन करती रहे। इस प्रकार सभी स्वजन अलग अलग ढंग से श्री कृष्ण से मिल रहे हैं। वहाँ एक संबंधियों का बहुत सुंदर अवसर मिला है एक दूसरे से बात करने, मिलने जुलने का। तो जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय जादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्रित हुईं और आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थीं। तो उनमें द्रौपदी जी भगवान के पटरानियों से बात करती हैं। द्रौपदी जी ने कहा, हे वैदर्भ्य चितो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामे कालिंदी, सभ्य रोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्ण पत्न्या एतन्नो ब्रूतयो भगवान स्वयं उपयेमे यथा लोकम अनुकुर्वन सोमाया, हे रुक्मिणी, हे भद्रे, हे जाम्बवती, हे सत्य, हे सत्यभामे, हे कालिंदी, सभ्य लक्ष्मणे, रोहिणी और अन्यान श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बतलाओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। तो सभी पटरानी अपने अपने ढंग से श्री कृष्ण प्राप्ति के रहस्य को बतलाती हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए वे लोग शस्त्र सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में अपना भाग ले लेता है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहें, मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरे पिता अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जमवान पर विजय प्राप्त करके वह रत्न लाकर मेरे पिताजी को दिए, और मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर चुके थे। यद्यपि वे दूसरों को मेरा वागदान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे सेमंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जामवंती जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जमवान को इस बात का पता नहीं था कि ये हमारे स्वामी सीतापति राम हैं, इसलिए उन्होंने 27 दिन तक इनके साथ लड़ाई की, परंतु जब परीक्षा पूरी हो गई, वे जान गए कि भगवान श्री राम हैं, तब इनके चरणों को पकड़कर सेमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे भी समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर में इनकी दासी बनी रहूं। कालिंदी जी ने कहा, हे द्रौपदी जी, जब भगवान को मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों को प्राप्त करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिए। मैं उनका घर बुहारने वाली दासी हूँ। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत कर जैसे सिंह कुत्तों के बीच से अपना भाग ले जाए, वैसे मुझे द्वारिकापुरी ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ा कर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उसे भी नीचा दिखा दिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य मिले। सत्या नागजीति ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ने स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए तीखे सिंह वाले 7 बैल रखे थे, लेकिन खेल खेल में भगवान ने उनको पकड़ लिया और नाथ दिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे उनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होती रहे। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा चित उनके चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मैंने अपने पिताजी को यह बात बताई, तब उन्होंने भगवान को बुलाकर अक्षौणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे समर्पित कर दिए। मैं अपना परम कल्याण इसी में मानती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ भी जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देवर्षि नारद के द्वारा भगवान के अवतार लीलाओं का गान सुनने का अवसर मिला, इससे मेरा चित भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। मेरे पिता बृहत्सेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे, इसलिए मेरा अभिप्राय जानकर उन्होंने एक स्वयंवर किया, जैसे आपके पिताजी मत्स्य वेधन का आयोजन किए थे उसी प्रकार मेरे पिताजी ने भी किया। लेकिन आपके स्वयंवर में और हमारे स्वयंवर में अंतर यह है कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, प्रकट नहीं दिख रहा था, केवल जल में उसकी परछाई दिखती थी। यह समाचार पाकर देश देशांतर के बहुत सारे राजा आए, लेकिन किसी ने उस स्वयंवर को नहीं जीत पाया। यहाँ तक कि पांडव वीर अर्जुन भी उस स्वयंवर में आए थे, जल में उस मछली का परछाई देख ली, यह भी जान लिए कि वो कहाँ है मछली। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण भी छोड़ा, परंतु लक्ष्य भेद न कर सके, बाण ने केवल मछली का स्पर्श भर किया। मुझे प्राप्त करने की लालसा से शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण आदि सभी लोग आए थे, लेकिन किसी ने लक्ष्य भेद नहीं कर पाया। तब भगवान आए और धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही डोरी चढ़ा लिए, बाण साधे और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा और उन्हें नीचे गिरा दिया। अभिजीत मुहूर्त था, मैं अपने मनोभीष्ट को प्राप्त करके भगवान के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार मैंने भगवान को प्राप्त की, भगवान मुझे उस स्वयंवर में मत्स्य वेधन करके प्राप्त किए। हे रानी जी, हमने पूर्व जन्म में अपनी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होंगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान कृष्ण की गृह दासियां हुई हैं। तो इस प्रकार आठ पटरानियों का वक्तव्य अलग अलग अपने ढंग से पूरा हुआ। इसके बाद 16,000 रानियों की ओर से रोहिणी जी बोलती हैं। रोहिणी जी भगवान श्री बलराम की माता हैं और एक रोहिणी भगवान की पत्नी हैं, जो भौमासुर के कारागृह में आबद्ध थी। 16,100 राजकुमारियां, उनमें एक रोहिणी जी थी। तो रोहिणी जी कहती हैं कि भौमासुर ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं को जीत कर उनकी कन्याओं हम लोगों को अपने महल में बंदी बना लिया था, और भगवान जब भौमासुर को जीत कर हम लोगों के पास आए, हम लोगों की मनोभीष्ट को समझ करके हमें दासी बनाए, हम सदा सर्वदा उन्हीं के चरणों का चिंतन करती रहती थी। द्रौपदी जी, हम सम्राज्य इंद्र पद अथवा इन दोनों के भोग अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सालोक सारूप आदि मुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के चरण कमलों की रज प्राप्त करें। उदार शिरोमणि, भगवान के जिन चरणों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियां, भिलिनियां, तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं को हम भी चाह रहे हैं। इस प्रकार द्रौपदी जी के समक्ष भगवान के पटरानियों ने कृष्ण प्राप्ति के रहस्य को व्यक्त की। तो सूर्य ग्रहण क्या लगा था, अपने स्वजनों का एक सुंदर समागम हुआ था, और कई महीनों तक अपने संबंधियों के साथ जादव, कौरव, पांडव और गोप लोग रुक गए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय वहां बहुत से ऋषि मुनि भी आए कृष्ण बलराम को देखने के लिए। बहुत सारे ऋषि मुनि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, दुनिया के कोने कोने से, ब्रह्मांड के कोने कोने से ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र में आए। उनमें प्रधान हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद, चवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, जागवल्क्य, वामदेव इत्यादि। ऋषियों को देखकर पहले से बैठे हुए नरपति सहसा खड़ा होकर अभिनंदन किए और विश्व वंदित ऋषियों के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किए। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान कृष्ण उनसे कहने लगे। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान की बात सुनने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धन्य है हम लोगों का जीवन सफल हो गया, आज जन्म लेने का पूरा पूरा फल मिल गया है, क्योंकि जिन जोगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उनका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। भगवान एक सदगृहस्थ का आचरण कर रहे हैं। किस प्रकार गृहस्थों को महात्माओं का आदर करना चाहिए, यह भगवान अपने लीला में स्थापित कर रहे हैं। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है, उनके लिए आप जैसे महात्माओं का दर्शन होना बड़ा कठिन काम है। इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मिट्टी या पत्थर की मूर्तियां ही देवता नहीं है, संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ हैं, देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तीर्थों का बहुत दिन तक सेवन किया जाए तब पवित्रता लाभ होता है, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से कृतार्थ कर देते हैं। न ह्यम यानी तीर्थानी न देवा मृछिलामया ते पुनंतुर काले न दर्शना देव साधव। हे महात्माओं, हे सभासदों, जो मनुष्य बात पीत और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए सौ तुल शरीर को ही सब कुछ मानता है, स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता है, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में गिरा हुआ नीच गधा है। जस्यात्म बुद्धि कुण पे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु भौमे इज्जधि जतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चेत जनेष्वभिगेषु स एव गोखर। वह बैल है या गधा है, गो अखर पशुओं में गिरा हुआ पशु, बैल या गधा है, जो महात्माओं में महत्व बुद्धि नहीं रखते। इस प्रकार जब भगवान महात्माओं की प्रशंसा किए तो महात्माओं ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि बड़े बड़े तत्वज्ञानी मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए मनुष्य की सी लीला करते हैं, अपने भगवत्ता को छिपाकर एक साधारण मानवोचित लीला करते हैं, यह परम आश्चर्यमयी है, परम विचित्र है। हे परमात्मन, ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि के स्थान है, इसी से आप ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं, इसी से आप ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य भी हैं। आप सर्वविध कल्याण साधनों के चरम सीमा हैं, संत पुरुषों के एकमात्र गति हैं। आपसे मिलकर आज हमारा जन्म विद्या तप ज्ञान सब सफल हो गया। वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। भगवान ऋषियों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और ऋषि लोग भगवान के चरणों में। हे प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आपने अपनी अचिंत शक्ति जोग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधना के द्वारा आपके उन चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगा जल के भी आश्रय स्थान है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें उन्हीं का दर्शन हुआ। प्रभु, हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोष आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान के चरणों में प्रणाम करके उनकी महिमा का गान करके ऋषि लोग जाने का विचार किए। तब तक वसुदेव जी उनके चरणों में आकर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। क्या प्रार्थना है? तो कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वसुदेव जी इसी प्रकार की जिज्ञासा करते रहते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण को अपना बालक समझते हैं। यद्यपि आश्चर्य का विषय है कि परम ब्रह्म भगवान ही इनका पुत्र है, फिर भी ये साधन पूछते रहते हैं। लेकिन इनकी भावना जो है कृष्ण के प्रति पुत्र भाव है, इसलिए ऐसे पूछ रहे हैं। ऐसा होता है, संसार में बहुत पास रहने पर मनुष्यों के अनादर का कारण हो जाता है। देखते हैं गंगा तट पर रहने वाले लोग गंगा जल को छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाते हैं। तो श्री कृष्ण के अनुभूति के श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। यह किसी दूसरे निमित्त से गुणों से या किसी प्रकार छीण नहीं होती। फिर भी वसुदेव जी की जो जिज्ञासा है उसके प्रति आप लोग कुछ विचार कीजिए और निर्णय दीजिए। इसके बाद ऋषियों ने भगवान कृष्ण बलराम और अन्य राजाओं के सामने ही सबके सामने वसुदेव जी को संबोधित करके कहने लगे। ऋषि लोग रुक गए और वसुदेव जी से बात किए। ऋषियों ने कहा कि कर्मों द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का अत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय है यज्ञ आदि के द्वारा यज्ञ के अधिपति भगवान की आराधना की जाए। हे वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को, काल क्रम से स्वर्गादि भोग भी नष्ट हो जाते हैं, इस विचार से लोकेशणा को त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए भी तीनों ऐसणाओं को त्याग कर तपोवन के लिए तैयारी करे। समर्थ वसुदेव ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों देवता ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं, लेकिन इन ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ अध्ययन और संतानोत्पत्ति से। इनसे ऋण हुए बिना जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव, अब आप ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इन ऋणों से मुक्त होकर भगवान के शरण में जाइए। वसुदेव जी, अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना आपने की है, तभी ये दोनों आपके पुत्र हुए हैं। इस प्रकार जब वसुदेव जी से ऋषि लोग कहे तो वसुदेव जी उनको रोक लिए और उन लोगों के आश्रय में यज्ञ प्रारंभ किए। यज्ञ के लिए वे ऋतिजों के रूप में महान ऋषियों का वर्णन किए और उस पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ प्रारंभ हुआ। वसुदेव जी जब यज्ञ के लिए दीक्षा लिए तब यदुवंशियों ने स्नान आदि करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण की और खूब सजे। वसुदेव जी की पत्नियों ने भी सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके अपने आप को सजाई और यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग पखावा संग ढोल नगारे आदि बजने लगे, नट नर्तकियां नाचने लगी, सूत मागध स्तुति गान करने लगे। वसुदेव जी इंद्र जैसे सुशोभित हुए। वसुदेव जी यज्ञ में ज्योतिषोम दर्श पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञ, सौर सत्र आदि वैकृतिक यज्ञ, वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। उस यज्ञ के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की गई। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतुजों को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किए, शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा दिए, प्रचुर धन के साथ अलंकृत गांवें, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी। फिर महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अवभृत स्नान आदि यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी के आगे करके परशुराम जी के बनाए हुए राम ह्रद में स्नान कराए। ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए और स्वयं नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक सबका सम्मान किए, सबको भोजन कराए। अपने भाई बंधु दोस्त मित्र सबको सम्मान किए। आए हुए विदर्भ कोसल कुरु काशी केकय संजय आदि देश के राजाओं सदस्यों ऋतुजों देवताओं मनुष्यों भूतों पितरों और चारणों की विदाई के रूप में बहुत से भेंट दिए। बहुत सुंदर समय पर बहुत अच्छे अवसर पर वसुदेव जी यज्ञ किए। वहाँ एक साथ बहुत से लोग जुटे हुए थे, सभी लोग उनके यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। उस समय राजा धृतराष्ट्र विदुर युधिष्ठिर भीम अर्जुन पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कुंती नकुल सहदेव नारद भगवान व्यास देव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु जादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। फिर भी बड़ी कठिनाई से एक दूसरे से विदा होकर सब अपने अपने घर के लिए अपने अपने देश के लिए रवाना हुए। भगवान कृष्ण और बलराम तथा उग्रसेन आदि नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों को बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किए। वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक रुके रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ के महासागर को पार कर गए। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहने लगे, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े शूरवीर और जोगी जति भी इसको तोड़ने में असमर्थ हैं। हम आप जैसे संत शिरोमणि का क्या सराहना करें। हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है आपने, हम इसका बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते। फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है, आप इसको सदा निभाते रहेंगे। भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण आपका कुछ भी प्रिय और हित नहीं कर सका। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्तियों के नशे से श्रीमद अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पा रहे हैं। ये तो दैन्यता है वसुदेव जी की, फिर भी कहते जा रहे हैं। दूसरों के सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, अमानी ना मान देना, जो कल्याण कामी है उसे राज लक्ष्मी न मिले इसी में उसका भला है, क्योंकि मनुष्य राज लक्ष्मी में अंधा हो जाता है, राज लक्ष्मी पाकर अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु स्वजनों तक को नहीं देख पाता है। इस प्रकार वसुदेव जी की बात सुनकर नंद बाबा भी प्रेम गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए, दोनों रोने लगे। नंद जी अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए एवं भगवान कृष्ण और बलराम के प्रेम पास में बंध कर आज कल करते करते 3 महीना तक वहीं रुक गए। इसका अर्थ यह है कि कुरुक्षेत्र में प्रायः लोग 3 महीना तक रुके हुए थे। जदवंशियों ने जी भर कर उनका सम्मान किया, बहुमूल्य आभूषण रेशमी वस्त्र नाना प्रकार के उत्तमोत्तम सामग्रियों और भोगों से नंद बाबा को, उनके ब्रजवासी साथियों को, बंधु बांधवों को खूब सत्कार किए, खूब तृप्त किए। वसुदेव जी, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव सभी जदुवंशी अलग अलग ढंग से नंद बाबा को भेंट दिए। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा गोपों और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया था कि प्रयत्न करने पर भी वहां से हटा नहीं पा रहे थे, अर्थात बिना हटाए ही बिना मन के वे मथुरा की यात्रा किए। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तम् पुनर्हर्तु मनीषा मथुरा मयेयु। वो प्रयत्न करते थे कि कृष्ण से अपना मन हटा लें, लेकिन हटा नहीं पाए, बिना मन के ही वो मथुरा चले गए। तो इस प्रकार धीरे धीरे जब सभी बंधु बांधव विदा हो गए, तो भगवान कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले जदुवंशी देखे कि अब वर्षा ऋतु आने वाली है, तब द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। वहां जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाए। जो लोग नहीं आए थे द्वारिका से, उन लोगों को कुरुक्षेत्र के आनंदोत्सव का वर्णन किए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का यह एक दिव्य प्रसंग है, जिसमें श्री भगवान के साथ उनके सगे संबंधियों का एक साथ मिलन हुआ। श्री भगवान अपने लीला काल में ब्रज में, मथुरा में, द्वारिका में और हस्तिनापुर में बहुत अधिक समय बिताए और सभी कृष्ण के अत्यंत प्रेमी हैं, ब्रजवासी, मथुरावासी, द्वारिकावासी और हस्तिनापुर वाले पांडव लोग। तो श्री कृष्ण बारी बारी से उन लोगों के पास रहते थे, जाते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र एक ऐसा मिलन हुआ जहाँ सभी लोग एक साथ जुटे और सबको कृष्ण के संग सुख का लाभ प्राप्त हुआ। यह बहुत सुंदर प्रसंग है, श्रीमद् भागवतम में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो यहाँ श्री कृष्ण के सौहार्द, स्नेह, भगवत्ता का प्रदर्शन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए, इसको वसुदेव जी देखे, देवकी जी देखी, तब एक दूसरे घटना का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि इसके बाद द्वारिका में एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम प्रातः कालीन अपनी माता पिता के पास प्रणाम करने गए। प्रतिदिन जगने के बाद, नींद से उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करने जाते थे। एक आदर्श चरित्र भगवान उपस्थित किए, माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना। तो प्रतिदिन जाते थे, गए, प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करने लगे और कहने लगे, वसुदेव जी बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी, उनके ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र को देखे थे, इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके कहने लगे, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे महाजोगेश्वर शंकरसण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान एवं पुरुष के भी नियामक हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे, दोनों के नियामक साक्षात भगवान तुम हो। कई बार वसुदेव जी ऐसा महसूस किए हैं, मथुरा, द्वारिका और हस्तिनापुर के परिकरों में कभी संबंध और कभी ऐश्वर्य प्रकट होता ही रहता है। तो वसुदेव जी इस प्रकार से भगवान के प्रति संबोधित करते हैं कि हे इंद्रियातीत प्रभु, हे परमात्मन, आप ही जगत के कारण हैं, आप ही इस चित्त विचित्र जगत का निर्माण किए हैं। अपने पुत्रों की स्तुति करने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो, पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए तुम लोग अवतार लिए हो, यह बात तुमने मुझसे कही भी है, जन्म लेते समय ही यह बात बताए। इसलिए दीन जनों के हित ऐसी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता के कारण बहुत दुख पाया, इसी से मृत्यु के चक्कर में पड़ता रहा। हे प्रभु, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा का पालन करने के लिए प्रत्येक युग में आता हूँ, तो तुम अनेक शरीरों को ग्रहण करते रहो, ऐसे ही जगत के हित करने के लिए आते रहो। वास्तव में तुम अनंत हो, तुम्हारी आश्चर्यमय शक्ति जोग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है, सब लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते रहते हैं। इस प्रकार वसुदेव जी कृष्ण बलराम को भगवान समझ करके उनके चरणों में स्तुति करने लगे। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं, पिताजी हम तो आपके पुत्र ही हैं, हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। पिताजी आप लोग, मैं, भैया बलराम, सारे द्वारिकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सबके सब आपने जैसा कहा वैसे ही है, जैसे आप समझते हैं समझिए। पिताजी आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक रूप में दिखता है। अपना स्वरूप अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण रूप में प्रतीत होता है। इसलिए आप इन सब बखेड़ों को छोड़िए, आप अपना पुत्र मानिए, मैं आपका बेटा हूँ, आप हमारे पिता हैं, इसलिए जो मैं हूँ उसी को समझिए। भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने अपना नानात्व बुद्धि छोड़ दी और मौन हो गए, भगवान के प्रेम में भर गए। उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी भी बैठी हुई थी, वो तो पहले से सुनकर विस्मित थी। कृष्ण और बलराम जिन्हें अपने मरे हुए गुरु पुत्रों को जमलोक से वापस लाया था, इस कथा को सुनी थी। देवकी को भी अपने मरे हुए पुत्रों का याद आ गई, जिसे कंस ने मार डाला था। उसके स्मरण से देवकी का हृदय भर गया, आतुर हो गई, नेत्रों में आंसू बहने लगा। बड़े ही करुण स्वर से कृष्ण और बलराम को संबोधित करके माता देवकी कहती है, हे लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। हे कृष्ण, तुम जोगेश्वरों के भी ईश्वर हो, आदि पुरुषो नारायण हो, भूमि के भार भूत इन राजाओं का नाश करने के लिए तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनी जी के पुत्र को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे, उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा से तुम लोग जमपुरी से वापस ला दिया। तुम दोनों जोगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला ला दो, मैं उन्हें जी भर के देख लूं। माता देवकी की बात सुनकर कृष्ण और बलराम मुस्कुराने लगे, ठीक है माता जी। और इसके बाद जोग माया का आश्रय लेकर सूतल लोक में गए। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव मेरे परम स्वामी भगवान कृष्ण बलराम सूतल लोक में पधारे हैं, तब वे अत्यंत आनंद में भर गए और झटपट आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किए, श्रेष्ठ आसन दिए कृष्ण बलराम के लिए और परिवार के साथ उपस्थित होकर भगवान के चरणों को धोए और अपने सिर पर चढ़ाए। दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरणों को कभी सिर पर रखते थे, कभी बक्षस्थल पर। उनका हृदय प्रेम से विह्वल हो गया, नेत्रों में आनंद के आंसू झरने लगे, रोम रोम खिल उठा, वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। दैत्यराज बलि कहते हैं कि हे श्री बलराम, आप अनंत हैं, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं, ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप हैं, आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं, हम आप दोनों के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को दर्शन दिए। हे जोगेश्वरों के अधीश्वर, बड़े बड़े जोगेश्वर भी प्रायः बात नहीं जानते कि आपकी जोग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या है। हे प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं, आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के वचनों से मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं, आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, हम क्या आपकी सेवा करें। भगवान कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। वे असुर योनि में हिरण्यकश्यपु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अब जोग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये साप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। ये 6 पुत्र हैं। इनका नाम है स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घिंडी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सदगति प्राप्त होगी। दैत्यराज बलि भगवान कृष्ण बलराम की पूजा किए, इसके बाद उन बालकों को लाकर दे दिए। फिर कृष्ण बलराम बच्चों को ले जाकर माँ देवकी को सौंप दिए। बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय वात्सल्य से भर गया, उनके स्तन में दूध बहने लगा। बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती, सिर सूंघती। पुत्र के स्पर्श के आनंद से सराबोर होकर देवकी उन बच्चों को स्तन पान कराई। उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था, जिन स्तनों को भगवान पिए थे उनको पीने का अवसर मिला। इस प्रकार उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया जिसे भगवान पिए थे, जिनको भगवान स्पर्श किए थे। इसके बाद उन लोगों ने भगवान कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वे लोग देवलोक चले गए। देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह कृष्ण की कोई लीला कौशल है। सुध गोस्वामी कहते हैं, इस कथा श्रवण के विषय में कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमय है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला और भक्त जनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान सुखदेव ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त करता है। य इदम अनुशृणोति श्रावयेद् वा मुरारे चरितम् अमृतकीर्ते वर्णितम् व्यास पुत्रैहि जगदघभिदलम् तद्भक्त सत्कर्णपूरम् भगवती कृत चीतो जाति तत्क्षेम धाम। इस प्रकार 85वां अध्याय पूरा हुआ। अब 86 अध्याय में महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। महाराज परीक्षित पूछते हैं, ब्रह्मन् वेदितुम् इच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः यथोपयेमे विजयो या ममासीत् पितामही। हे भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है। तो अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग गई। वे साधु वेश में रहते थे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे, द्वारिका के निकट। वहाँ पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता नहीं चला कि ये अर्जुन है। एक दिन बलराम जी आतिथ्य के लिए भी निमंत्रित किए थे, तो त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन बलराम जी से अत्यंत श्रद्धा के साथ आमंत्रण स्वीकार किए। बलराम जी उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराए। तो भोजन के समय वहाँ विवाह योग परम सुंदरी सुभद्रा आई। वही अर्जुन को खिला रही थी। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए, उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ऐसे परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े सुंदर थे। उनके शरीर का गठन, भाव भंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुरा कर लजीली चितवन से उनके ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अब तो अर्जुन केवल उसी का चिंतन करते और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि कब हर कर ले जाऊं। एक बार सुभद्रा देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन देवकी, वसुदेव और कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा हो सकता है वो अपना मनोभीष्ट श्री कृष्ण से कहीं हो, या वसुदेव जी से कहीं हो, या देवकी से, जो भी हो, ये तीनों एक मत में थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ होना चाहिए। तो इनके अनुमति प्राप्त करके अर्जुन सुभद्रा का हरण कर लिए। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया। जो सैनिकों के रोकने के, जो सुभद्रा जी के साथ सैनिक आए थे, उन सैनिकों के रोकने के लिए मार पीट कर भगा दिए। सुभद्रा के निजी जन रोते चिल्लाते हुए गए और श्री बलराम जी को सूचना दिए। समाचार पाकर बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, एकदम क्षुब्ध हो गए। बलराम जी के क्षोभ का वर्णन करते हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र क्षुब्ध हो जाता है, वैसे बलराम क्षुभित हो गए। भगवान कृष्ण उनके चरणों में पड़कर उनको बहुत समझाए बुझाए। बाद में जब पता चला कि जादव सेना को लौटाने में जब अर्जुन धनुष बाण चला रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो सुभद्रा रथ हाँक रही थी। भगवान कृष्ण ने श्री बलराम जी को समझाया कि आप ये बतलाइए कि सुभद्रा जब रथ को लेकर जा रही थी तो अर्जुन कैसे हरण किए। सुभद्रा अर्जुन को चाहती थी ना, इसीलिए रथ संचालन कर रही थी, सारथी का काम कर रही थी ना। बलराम जी इस बात से समझ गए कि सुभद्रा का मन था अर्जुन को प्राप्त करने का, इसलिए बलराम जी बाद में प्रसन्न हो गए और वर वधु के लिए बहुत सारे धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासी दहेज में भेजे। तो यह सुभद्रा के साथ अर्जुन की विवाह की कथा कहकर सुखदेव गोस्वामी आगे भगवान की एक और अद्भुत कथा को कहते हैं, अद्भुत लीला को कहते हैं। विदेह राज की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति में ही पूर्ण मनोरथ थे, परम शांत थे, ज्ञानी थे और विरक्त। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार के उद्योग नहीं करते थे, जो कुछ मिल जाता उसी में सन्यासी की तरह संतुष्ट हो जाते। प्रारब्ध बस प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह के लिए कुछ मिल ही जाया करती थी वस्तुएं, वो उसी में संतुष्ट हो जाते थे। तो उस देश के राजा भी, विदेह के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश। उनमें भी अहंकार का लेश नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश दोनों ही भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान कृष्ण उन दोनों पर प्रसन्न हो गए और दारुक से रथ मंगवाए और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की यात्रा किए। भगवान के साथ और भी अनेक ऋषि मुनि चल दिए। साथ में द्वारिका में रहते थे, घूम फिर कर भगवान का दर्शन करते थे, साथ सानिध्य प्राप्त करते थे। तो वे ऋषि मुनि भी विदेह नगर की ओर चल दिए। तो उन ऋषियों में कुछ का नाम रखते हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेद व्यास, परशुराम, असित, आरुणी, मैं अपने को भी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, बृहस्पति, कर्व, मैत्रेय, चयवन आदि ऋषि उपस्थित थे। वे जहाँ जहाँ पहुँचते थे वहाँ के नागरिक और ग्रामवासी अगवानी करते, पूजा करते थे। उस यात्रा में आनर्थ, धन्म, कुरु, जंगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कोशल और आदि अनेक देशों के नर नारियों को कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिला, दर्शन करने का अवसर मिला। इस प्रकार भगवान अनेक भक्तों को दर्शन का सौभाग्य देते हुए मिथिला में पहुंचे। भगवान कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर मिथिलावासी बहुत प्रसन्न हुए। अपने हाथों में पूजा के विविध सामग्री लेकर अगवानी करने के लिए आगे आए। जब भगवान को सामने देखे तो वे ब्राह्मण और महाराज बहुलाश बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए, झुककर प्रणाम किए। जगत गुरु भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। पृथ्वी पर झुक कर भगवान के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किए। बहुलास और सुरतदेव दोनों ने एक ही साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। दोनों हाथ जोड़कर कहे कि प्रभु आप हमारे घर चलिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे। यह बात एक दूसरे को मालूम नहीं पड़ी। भगवान कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं जा रहे हैं, यह न विदेह राज बहुलास को पता चला और न सुरतदेव को, किसी को पता नहीं चला। और इसके साथ साथ केवल भगवान ही नहीं, ऋषि मुनियों का सेट भी दो सेट हो गया। ऋषि मुनि लोग भी दोनों के घर गए और दोनों के आतिथ्य को स्वीकार किए। विदेह राज बहुलास बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देख कर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर आसन मंगाए और भगवान कृष्ण तथा ऋषि मुनियों को आराम से बैठने के लिए कहे। उस समय बहुलासु की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर गया, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार किए, पांव पखारे, कुटुम्ब के साथ उनके चरणों का धोवन अपने सिर पर चढ़ाए, अनेक प्रकार से सम्मान किए, गंध माला वस्त्र अलंकार धूप दीप अर्घ आदि समर्पित किए। जब सब लोग भोजन कर लिए, खा पी लिए, आराम करने लगे, तब महाराज बहुलास भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े प्रेम से आनंद से सहलाते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। बहुलास महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरणों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, सबके जीवन दाता, आप कृपा करके हमारे घर पधारे, आप कुछ दिन यहाँ रुकिए। इस प्रकार महाराज बहुलास भगवान को रुकने के लिए प्रार्थना किए। भगवान रुक गए और उनके साथ ऋषि मुनि लोग भी रुक गए। जैसे राजा बहुलास भगवान कृष्ण को प्राप्त करके आनंद मग्न थे, वैसे ही सुरतदेव ब्राह्मण भी, वे भी अपने घर मुनि मंडली को और भगवान को देखकर बहुत आनंदित हुए। अपने घर जो उपलब्ध वस्तुएं थी उसे स्वागत किए। बैठने के लिए चटाई पीढ़े कुशासन बिछाए, भगवान कृष्ण और मुनियों को बैठाए, स्वागत सत्कार किए, अभिनंदन किए। अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से उनके पांव पखारे, चरणोदक घर में छिड़के, अपने सिर पर चढ़ाए, अत्यंत आनंदित हो गए। मन ही मन सोचने लगे, मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ अभागा हूँ, मुझे भगवान कृष्ण और इनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का दर्शन कैसे हो रहा है, जिनके चरणों की धूल समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाला है, कैसे हमें प्राप्त हुआ। सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए। तब सुरदेव अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करते हुए सुरदेव कहने लगे, हे प्रभु, आप पुरुषोत्तम हैं, मुझे आपने दर्शन दिया, आप सब लोगों को मिले हुए हैं, आप अपने शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, आप ही एकमात्र ईश्वर हैं, हम पर कृपा करके हमारे घर पधारे हैं। हे प्रभु, जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा उसकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी चर्चा करते हैं, अपने घर परिवार में आपके विषय में चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। शिण्वताम गदताम सस्वद अर्चताम त्वाभिबंदताम निर्णाम संवदताम अंतर हृदय भाष्य मलात्मनाम। हे प्रभु, आपके विषय में चर्चा करने वालों के हृदय में आप प्रकाशित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। जब तक जीव आपका दर्शन नहीं करता तभी तक उसके जीवन में क्लेश होता है। प्रभु, आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। जब आपका दर्शन हो जाता तो सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, प्रिय सुरतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचर रहे हैं। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन स्पर्श अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में प्रसन्न होते हैं। परंतु संत अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में भी जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी इन संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शन अर्चनाई शनैः पुनन्ति कालेन तदप्य अर्हतमेक्षया। हे श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो जाए तो कहना ही क्या है। ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनाम इह तपसा विद्या तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः। न ब्राह्मणान मे दैतम रूप मे तत् चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो हम। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय है और मैं सर्व देवमय हूँ। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मनुष्य केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकाल कर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का तिरस्कार करते हैं, वे इस बात को नहीं जानते कि ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, उसे संबंधित सारी भावनाएं और प्रकृति महत्वाति सब या सब कुछ आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इस सारे रहस्य को जानते हैं। इस बात को जो दुर्बुद्धि न जानकर अपमान करते हैं वास्तव में दुख के भागी होते हैं। इसलिए सूर्यदेव, तुम इन ब्रह्मर्षियों को मेरा ही स्वरूप समझ कर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अन्यास ही मेरा पूजा कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। तस्मात् ब्रह्मर्षि नेतान ब्रह्मन् मत् श्रद्धयार्चय एवं चेद अर्चितोस्म्यद्धा नान्यथा भूरि भूतिभिः। तो इस प्रकार भगवान का आदेश प्राप्त करके सूर्यदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनके कृपा से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। और उधर महाराज बहुलाश्व की भी वही गति हुई। तो जैसे भगवान की जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुर में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके द्वारिका लौट आए। एवं सब भक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उषित्वा दिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगात। इस प्रकार भगवान फिर द्वारिका लौट आए। इसके बाद महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं। 87 अध्याय में महाराज परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है, तीनों गुण उसमें नहीं है, मन और वाणी से उनका निर्देश नहीं किया जा सकता, समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है, ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती है, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच के परे है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। इस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने भगवान नारायण को बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और उनसे प्रश्न पूछा जो तुम पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान नारायण ने कहा, नारद, प्राचीन काल की बात है, एक बार जन लोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एक ब्रह्म सत्र कर रहे थे, ब्रह्म विषय विचार कर रहे थे। तो यद्यपि ये चारों एक समान है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान है, उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से श्रेष्ठ सनंदन को वक्ता बनाया और शेष भाई सुनने के इच्छुक होकर बैठ गए। तो उस समय इसी प्रकार की जिज्ञासा की गई तो सनंदन जी ने कहा कि जिस समय प्रातः काल होने पर सोते समय सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदी जन उनके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम और सूजस का गान करके जगाते हैं। वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके जब सो जाते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उनको जगाती हैं। तो किस प्रकार श्रुतियां भगवान के गुणों का वर्णन करती हैं, उसको सनंदन जी कहते हैं। श्रुतियां कहती हैं,
जय 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 जाम जित दोष गृभीत गुणाम तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जग दोक साम खिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचर तो नुचरे निगमः।
हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। हे प्रभो, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों को आनंद आदि सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए सत्वादि गुणों को ग्रहण कर दिया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया और शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंदमय श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तब हम किंचित आपके वर्णन करने में समर्थ होती हैं।
विजित हिषिक वायु भीर दांत मनस्तुरगम यतंति यंतु मति लोलमुपाय खिदः व्यसन सतान्विता समवहाय गुरोः शरणम् बड़ी जैवाज संत्यकृत कर्ण धरा जलधौ।
हे अजन्मा प्रभु, जिन जोगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं हो पाते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगते हैं। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार के नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। जो मन को बस में करना चाहता है, उसके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। गुरु के चरणों में सेवा की अनिवार्यता है और गुरु की कृपा की आवश्यकता है।
स्वजन सुतात्म दार धन धाम धरा सुरथई त्वयि सती किं नृणां शयत आत्मनि सर्वरसे इति सद जानता मिथुन तो रतये चरताम सुखयति को नीह स्विहते स्वनिरस्त भगे।
हे प्रभु, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। जो लोग इन सत्य सिद्धांतों को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में रम जाते हैं, उन्हें संसार में भला कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? कोई नहीं, क्योंकि संसार के सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन समाप्त होने वाली है। और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है, वे भला क्या सुख दे सकते हैं?
यदि न समुधरन्ति यतयो हृदि काम जटा दुरधिगमो सताम हृदि गतो स्मृत कंठ मणि असुतृप जोगिनाम उभयतोऽप्य सुखम भगवन् न नपगतांत कादन धीरूढ़ पदाद भवतः। हे भगवान, यदि मनुष्य जोगी जति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ हो जाते हैं जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है क्योंकि वे साधक नहीं हैं, दंभी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं और दूसरे आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भी भय बना ही रहता है। इस प्रकार हे देवर्षे, सनकादिक ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की स्वरूप को बतलाने वाले आत्म तत्व का उपदेश किए और उस उपदेश को सुनकर वे कृत कृत होकर सनंदन की पूजा किए। नारद, सनकादिक ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए हैं, अतएव सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ दिया है, यह सबका सार सर्वस्व है। हे देवर्षे, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो, तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी पर विचरण करो, यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। इस प्रकार देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी और पूर्ण काम नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया, तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया और फिर कहे, हे भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं, आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किए हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने उनका यथोचित सत्कार किया, आसन स्वीकार करके सब बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुने थे वह सब मेरे पिताजी को सुना दिए। तो राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया मन वाणी से अगोचर एवं समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती हैं और उनमें मन कैसे प्रवेश होता है। यद्यपि श्रीमद् भागवतम का यह अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, श्रुतियों का उद्गार, वेदों का सारांश है, बड़े कठिन श्लोकों में इसका वर्णन है, बड़े बड़े आचार टीकाकार इस पर मनन चिंतन करते हैं और सब मिलाकर श्रुतियों के सारांश में भगवान कृष्ण की आराधना बताई गई है और वो भी आराधना एक परंपरा से आचार्यों के शरणागति स्वीकार करके गुरु चरणों की आश्रय लेकर श्रवण कीर्तन के माध्यम से, जो कि एक वैष्णव परंपरा है इस रूप में। तो इस प्रकार फिर आगे 88 अध्याय में महाराज परीक्षित की एक जिज्ञासा है कि देवासुर मनुष्यु जे भजंत्य शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा नतु लक्ष्म्या पतिम हरिम। सुखदेव गोस्वामी के समक्ष महाराज परीक्षित ने अद्भुत प्रश्न किया कि हे भगवान, भगवान शंकर समस्त भोगों का परित्याग कर चुके हैं, परंतु देखा जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। एतद् वेदितुमिच्छाम संदेहो अत्र महान हीनः विरुद्धशीलयो प्रभ्यो विरुद्धा भजताम गति। दोनों प्रभु त्याग और भोग के दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह हो रहा है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं, वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता है। भगवान हरि प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम प्राकृत गुण रहित है, जो उनका भजन करता है वो गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों के विषय में प्रश्न किए। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, मनुष्यों के कल्याण के लिए यदुवंश में अवतार लिए हैं, महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न सुनकर उनके सुनने की इच्छा देखकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिए, तो उसी को मैं सुनाता हूँ। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर भी इसी प्रकार के प्रश्न किए थे और भगवान कृष्ण ने उनका उत्तर दिया था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखा कुल चित की परवाह न करके उसको छोड़ देते हैं। जस्या अहम अनुगृहणामी हरिषे तधनम सनई ततो अधनम त्यजन त्यस्य स्वजना दुख दुखितम स यदा वितथो योग्यो निर्वीण सा धने हया मत्परई कृत मैत्रस्य करिषे मदनुग्रहम। फिर वह धन के लिए जब उद्योग करता है तब मैं उसका प्रयत्न निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार वह असफल होता है और असफल होने के कारण धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर उधर से मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुकी कृपा का वर्षा करता हूँ। तद ब्रह्म परमम सूक्ष्मम चिन्मात्रम सद अनंतकम अतो माम सुदुराराध्यम हित्वा अन्यान भजते जनः। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सचिदानंदमय स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता मेरी आराधना बहुत कठिन है, इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर दूसरे अन्यान देवताओं की उपासना करते हैं और दूसरे देवता आशुतोष है वे झटपट पिघल जाते हैं, अपने भक्तों का साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं, उसे पाकर वे श्रृंखल प्रमादी और उन्नत हो जाते हैं। यहाँ तक कि वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं, उनका भी तिरस्कार करने लगते हैं। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि हे महाराज, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये तीनों साप और वरदान देने में समर्थ है, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र प्रसन्न और रुष्ट होकर वरदान और श्राप दे देते हैं, परंतु भगवान विष्णु ऐसा नहीं करते। इस विषय में महात्मा लोग एक इतिहास कहते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर का भजन एक असुर किया जिसका नाम था वृकासुर और भगवान शिव उसको वरदान देकर संकट में पड़ गए। एक दिन वह वृकासुर देवर्षि नारद से प्रश्न किया कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। देवर्षि नारद ने कहा कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो नारद जी का उपदेश पाकर शकुनी नंदन वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शिव का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर जब भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वां दिन उस केदार क्षेत्र में स्नान करके अपने भींगे हुए बाल वाले मस्तक को कुढ़ाड़ी से काट करके हवन करना चाहा। तो शंकर जी ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्नि कुंड से अग्नि देव के समान प्रकट हो गए और दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, गला काटने से रोक दिए और भगवान शिव के स्पर्श करते ही जो कटे हुए भाग थे वो भी ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए, स्वस्थ हो गए। फिर भगवान शंकर वृकासुर से कहने लगे, प्यारे वृकासुर, बस 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 बहुत हो गया, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से संतुष्ट हो जाता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो, बोलो क्या चाहिए। तो अत्यंत पापी वृकासुर कुछ रुक कर सोचने लगा क्या मांगना चाहिए और भगवान शिव से क्या भूल हो गई कि वो पार्वती के साथ प्रकट हो गए। अब वृकासुर बार बार उनके पत्नी को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इनकी पत्नी को डायरेक्ट मांगता हूँ तो ये तो मार डालेंगे, इसलिए इनकी पत्नी कैसे प्राप्त हो इसके लिए उपाय ढूंढने लगा। तो बहुत सोच विचार करके वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह जलकर भस्म हो जाए। तो पहले तो शिव जी सुनकर थोड़ा सा सकुचाए, फिर हंस कर कहे ठीक है ऐसा ही होगा। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया हो। अब तो भगवान शंकर के तथास्तु कहते ही वो चल दिया वर की परीक्षा के लिए शिव जी पर ही हाथ रखने। अब वरदान देकर शिव जी संकट में पड़ गए, लगे भागने, भयभीत हो गए। वे पृथ्वी स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते रहे, वो पीछा करने लगा। बड़े बड़े देवता भी संकट को टालने में असमर्थ हैं। यह देखकर भगवान शिव वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ लोक में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं, एकमात्र वे सन्यासियों के परम गति हैं। वहां भगवान शिव गए और भक्त भयहारी भगवान जब देखे कि शिव जी संकट में पड़े हुए हैं तो तुरंत अपनी जोग माया से ब्रह्मचारी रूप बनकर धीरे धीरे वृकासुर के पास आ गए। एक बटु ब्राह्मण का रूप धारण किए थे, मुंज की मेखला, काला मृग चर्म, दंड और रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। जब सामने आए वृकासुर भाग रहा था, झुक करके प्रणाम किए। जब वृकासुर देखा, अरे बटुक ब्रह्मचारी कौन है, भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। वृकासुर को देख करके भगवान प्रणाम किए और कहने लगे, रोकने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अब रोकना है तो आकर कहने लगे, शकुनी नंदन वृकासुर जी कहाँ जा रहे हैं, आप स्पष्ट रूप से थके हुए लग रहे हैं, अरे तनिक विश्राम कर लीजिए, देखिए यह शरीर सुखों का जड़ है, इसी से सारी कामनाएं पूर्ण होती है, इसको अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए, अब क्या करना चाहते हैं, क्यों इतना बेचैन है, हमें तो बताइए, यदि मेरे सुनने लायक कोई बात है तो अवश्य बताइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं, मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूँगा। जब इस प्रकार भगवान बोलने लगे तो भगवान के बाड़ी में तो अमृत बरस रहा था, वृकासुर सुनने लगा तो दौड़ते जा रहा था और वो भी उसके पीछे पीछे साथ साथ दौड़ दौड़ कर पूछ रहे थे। तब तक थोड़ा सा ठहर गया और रुक करके वो सारी घटनाओं को बताया, या चलते चलते ही बताया कि शिव जी के तपस्या करके मैं इनको संतुष्ट कर लिया हूँ और उनसे वरदान मांगा हूँ, मैं इनके सिर पर हाथ रखने जा रहा हूँ। तब वो बटु ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम इसकी बात पर विश्वास नहीं करते, आप नहीं जानते हैं क्या, लगता है आपको पता नहीं है, वह तो दक्ष प्रजापति के साप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है, इस घटना को आप नहीं सुने हैं, आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट बना है, इनके साथ कौन है, कोई देवता रहता है, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी यही सब रहती हैं इनके साथ। ओहो दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, आप यदि अब भी इसे जगत गुरु मानते हैं, इसकी बात पर विश्वास करते हैं, तो आप झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा ले लीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत निकल गई, तो उस असतवादी को मार डालिए, जिसे फिर कभी किसी से झूठ न बोल सके, इसे कुछ नहीं होता है, आप देख कर तो देखिए, आप अपने सिर पर हाथ रख कर देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। एक भागवत वक्ता कह रहे थे कि भगवान अपने मोहिनी बाणी से वृकासुर को एकदम रोक दिए, दौड़ना ही बंद हो गया, रुक गया और सुनने लगा, जब सुनने लगा तो भगवान उसको एकदम मोहित कर दिए, कहे कि आप कैसे विश्वास कर लिए कि हाथ में जलाने की शक्ति है, उसमें आँच निकल रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि उसमें जलन है, थोड़ा सा सिर के निकट आइए, अगर हाथ को निकट लाइए, सिर के निकट लाइए, और जब उसमें आँच आएगा तो मान लिया जाएगा कोई जला सकता है। कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, तो फिर आप अपने सिर पर रख क्यों नहीं लेते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, अगर नहीं जलेगा तो फिर हम भी आपकी सहायता करेंगे और उस झूठा को मार डाल दिया जाएगा, उसको जीवित नहीं छोड़ना है, उस असत्यवादी को मार डालिए, वो कभी किसी को धोखा न दे सके। अब तो भगवान की ऐसी मोहिनी अद्भुत मीठी बात को सुनकर उसकी विवेक जाती रही, अब एकदम भूल गया, वो दुर्बुद्धि ने भूल कर अपने ही सिर पर हाथ रख दिया, बस उसी क्षण उसका सिर फटा और वहीं धरती पर गिरकर मर गया, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी। उस समय आकाश में देवता लोग जय हो नमो नमो साधु साधु के नारे लगाने लगे। पापी वृकासुर की मृत्यु से सभी लोग प्रसन्न हुए, देवता ऋषि पितर गंधर्व सब प्रसन्न होकर भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और इधर भगवान जब शिव जी के पास आए तो शिव जी तो एकदम थके मांदे एकदम कांप रहे थे, तो भगवान पहुंच करके सारी घटना बताए कि शिव जी आप अब चिंता मत कीजिए, वो असुर मारा गया। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि आप दुष्ट को मार डाले, हे परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो आपके कृपा से सुखी न रहे। भगवान शिव से भगवान विष्णु कहते हैं कि हे शिव, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, वह मारा गया, आप जैसे महापुरुष का अपराध करके वो कैसे कुशल रह सकता है, यह असंभव बात है, वह दुष्ट अपने पापों से मरा, आपको इस विषय में कोई चिंता नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ भगवान संकेत किए
कि शिव जी आप सोच विचार करके वरदान दिया कीजिए असुरों को। तो इस प्रकार भगवान अनंत शक्ति के समुद्र हैं, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा के परे है, प्रकृति से अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला को जो कोई कहता है सुनता है वह संसार के बंधनों से और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार अब दशम स्कंद में दो अध्याय आगे बाकी है। एक और विचित्र घटना का चर्चा करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर जग प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। उन लोगों ने इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है। तो ये बात जानने के लिए भृगु जी को ये लोग अपना लीडर बनाए, कैसे पता लगाया जाए। तो भृगु जी कहे ठीक है, हम इन तीनों की परीक्षा लेकर आते हैं, तब निर्णय देते हैं कौन बड़ा है। तो महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी की धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया, अन स्तुति की, जाकर ब्रह्मा जी के निकट आसन पर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि अरे ये प्रणाम भी नहीं करता है, कुछ बोलता भी नहीं है। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु ब्रह्मा जी अपने क्रोध को दबाने लगे। ये पुत्र है और इस पर क्रोध करके अगर श्राप भी देते हैं तो अच्छा नहीं होगा। जैसे तैसे ब्रह्मा जी अपने क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिए, लेकिन भृगु जी समझ गए कि एकदम तिलमिला गए। क्रोध तो आ गया चेहरे पर, आंख पर, सब जगह, लेकिन ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, क्रोधित होकर भी अपने को संभाल लिए। फिर वहां से भृगु जी शिव जी के पास गए कैलाश में। तो भृगु मुनि को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, खड़ा हो गए और आनंद से आलिंगन करने के लिए हाथ फैलाए, अपनी भुजाओं को फैलाए, आओ आओ भृगु आओ, खुश होकर अभिनंदन करते हुए शिव जी हाथ फैलाए। तब तक भृगु मुनि आलिंगन स्वीकार करना तो दूर रहा, बड़ा उटपटांग बोले, हटो हटो अमंगल वेशधारी, तुमको शर्म नहीं लगता है मुझे स्पर्श करने में? उस श्रृंखल वेद की मर्यादा का उल्लंघन करता है, मरघट की राख लगाकर घूमता है, कोई शील स्वभाव नहीं, कोई सदाचार नहीं, आता है हमारे जैसे ब्राह्मण का स्पर्श करने, शर्म नहीं लगता है, चलो हटो पिशाच कहीं का। इस प्रकार जब भृगु जी बोले तो शिव जी तो एकदम क्रोध से तिल मिला गए, उनकी आंखें चढ़ गई, उन्होंने त्रिशूल उठा लिया, भृगु को मारने के लिए चल दिए। परंतु वहीं उपस्थित भगवती सती भगवान शिव के चरणों में गिर करके बहुत अनुनय विनय करके शिव जी को समझाने लगी, उनका क्रोध शांत करने लगी। अरे अरे आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। तो अब भृगु जी को तो रुकना नहीं था, बस आए थोड़े देर के लिए, परीक्षा लिए चल दिए। ब्रह्मा जी को कुछ न बोलकर, प्रणाम न करके क्रोधित कर दिए, शिव जी को कुछ शब्दों से बोलकर क्रोधित कर दिए। इसके बाद भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, लक्ष्मी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे निश्चिंत। आ तब तक भृगु जी पहुंचे और पहुंच करके भगवान के वक्षस्थल पर छाती पर खींच कर एक लात मारे। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ झटपट उठ गए और अपने आसन से उतर करके मुनि को सिर से प्रणाम किए और कहने लगे, ब्रह्मन आपका स्वागत है, आप भले पधारे, इस आसन पर बैठिए, कुछ क्षण विश्राम कीजिए, अपने आसन पर बैठाए। और इसके बाद कहने लगे, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आपके शुभागमन का पता नहीं था, मैं आपकी अगवानी नहीं कर सका, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हे महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है, हमारे कठोर वक्षस्थल पर लगने से आपको चोट लगा होगा। इस प्रकार कहकर भगवान भृगु जी के चरणों को पकड़ लिए और हाथों से सहलाने लगे, मलने लगे और बोले, हे महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों का भी तीर्थ बनाने वाला है, आप उससे वैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया, अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी और यह आपका चरण चिन्ह सदा मेरे वक्षस्थल पर विराजमान रहेगा। इस प्रकार भगवान भृगु जी के चरणों को पकड़कर अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करने लगे, भृगु जी की महिमा गाने लगे। जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा तब भृगु जी परम सुखी हो गए, तृप्त हो गए और भक्ति के उद्रेक से उनका गला भर आया
आंखों में आंसू छलक गए और चुप हो गए। फिर कुछ देर तक भगवान के पास रहकर भृगु जी उन ब्रह्मर्षियों के सभा में आए सरस्वती नदी के तट पर, जहाँ तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है इसका निर्णय हो रहा था। आकर भृगु जी ने सारी घटनाओं को हूबहू सुना दिया। तो भगवान विष्णु से साक्षात धर्म ज्ञान वैराग ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला जस प्राप्त होता है। सभी लोग इसको सुनकर चकित हो गए, सबको विस्मय हुआ, लेकिन उनका संदेह दूर हो गया। सभी लोग एक स्वर से स्वीकार किए कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। शांत समचित अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों के एकमात्र गति हैं, ऐसा सारा शास्त्र कहता है। सारे ऋषि मुनि इस निर्णय पर आए कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। इस घटना से एक शिक्षा मिलती है कि सहनशीलता ही महानता का पहचान है, अतः महान बनने के लिए सहनशील बनना परम आवश्यक है। सहनशीलता, सहनशीलता। तो इस प्रकार इसी अध्याय में एक दूसरे घटना की चर्चा करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। ब्राह्मण उस बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल पर आए और अत्यंत आतुर और दुखी होकर विलाप करने लगे और वहां द्वारिका के महान व्यक्तियों के विषय में आक्षेप करने लगे। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही धूर्त कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष के कारण हमारे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा को इसी प्रकार दुख पर दुख भोगनी पड़ती है। हे महाराज परीक्षित, केवल एक ही पुत्र नहीं, एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे करते हुए अनेक पुत्र जन्म लिए और मरते गए। 8 पुत्र मर गए, 9वें पुत्र के मरने का टाइम जब आया जन्म लेने का, और जन्म लेते ही मरना ही था, जानता था, तब वो एक दिन बालक के जन्म लेने के पहले ही आया जादवों की सभा में। वहाँ भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन बैठे हुए थे, तो उन लोगों को सुनाकर कहने लगा कि इस प्रकार हमारे पुत्र मर रहे हैं और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सारी घटनाओं को जब बतलाने लगा तब अर्जुन कहते हैं, ब्राह्मण आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुर्धारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये जदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा पालन का परित्याग करके यज्ञ के लिए बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन स्त्री अथवा पुत्रों से विजुक्त होकर ब्राह्मण दुखी हो, वे क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, इनका जीवन व्यर्थ है। मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूद कर जल मरूंगा, इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, अवश्य मैं आपके होने वाले संतान की रक्षा करूंगा। ब्राह्मण कहा, अर्जुन यहाँ बलराम और भगवान कृष्ण धनुर्धारी प्रद्युम्न अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध मेरे बालक की रक्षा नहीं कर पाए, इन जगदीश्वरों के रहते हुए भी यह काम कठिन है, तुम कैसे करना चाहते हो? सचमुच तुम्हारी मूर्खता है, अज्ञता है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते। अर्जुन कहे, ब्राह्मण मैं बलराम और कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। खूब अर्जुन डिंग हाके कहा, ठीक है, अब सबका हो गया, आपको भी देखना है। तो जब 9वें संतान के जन्म लेने का समय हुआ तब वह दौड़ते हुए अर्जुन के पास आया, कहा कि तुम मेरे बच्चे को बचा लो, बचा लो, ये जन्म लेते ही मर जाएगा। तो अर्जुन सुनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए, देखते हैं कौन आता है। अब फिर अपने को शुद्ध जल से आचमन आदि करके तैयार हुए, भगवान शिव का स्मरण किए, दिव्य अस्त्रों का स्मरण करके गांडीव धनुष पर चढ़ाए और पूरा कवच बना दिए, चारों तरफ से घेर लिए बाणों से, पिंजड़ा बना दिए, देखते हैं कौन आता है। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते देखते वो सशरीर आकाश में अंतर्हित हो गया। और बच्चे तो मरते थे, उसका लाश, उनका लाश मिलता था, और इस बच्चे का लाश ही नहीं मिला, उड़कर चला गया। अब ब्राह्मण लगा रोने और लगा अर्जुन की निंदा करने, ओहो मेरी मूर्खता को देखो, मैं इस नपुंसक की डिंग भरी बात पर विश्वास कर लिया, भला जिस जिन बच्चों को प्रद्युम्न अनिरुद्ध कृष्ण और बलराम नहीं बचा सके उनको ये क्या बचा सकता है। ये मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है, इसके धनुष को धिक्कार है, इस दुर्बुद्धि को देखो, यह मूर्ता बस बालक को लौटा लाना चाहता था जिसे प्रारब्ध अलग कर दिया, उसको ये कैसे ला सकता है, मूर्ख है, इस प्रकार लगा बोलने ब्राह्मण। अब तो अर्जुन एकदम आग बबूला हो गए, अब क्या करे। तत्काल संयमनीपुरी में गए जहाँ भगवान जमराज निवास करते हैं, वहां उन्हें बालक को नहीं पाए। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरीति, सोम, वायु, वरुण आदि पुरियों में, अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग के ऊपर, महर लोक आदि में, अन्यान स्थानों में गए, परंतु कहीं भी बालक नहीं मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, तब भगवान कृष्ण उनको रोकते हैं, कहते हैं कि हो गया, बस बात के बात में प्रतिज्ञा कर लेते हो, और कुछ करना है न धरना है, बस जल जाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, चलो हमारे साथ। तब भगवान इस प्रकार रोक दिए और कहे कि चलो अभी बालक को दिखाता हूँ। तो सर्वशक्तिमान भगवान अर्जुन को समझा बुझा कर एक दिव्य रथ पर चढ़ाए और वो रथ पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। सात सात पर्वतों को पार करके, सात द्वीप, सात समुद्र, लोक लोक पर्वत को लांघ कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। और भगवान के रथ के घोड़े शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक, ये समर्थ घोड़े जो कहीं भी जा सकते थे, वे भी रास्ता भूलने लगे अंधेरा के कारण, उनको कुछ सूझता ही नहीं था। फिर भगवान अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र को आगे किए और उसके प्रकाश में घोड़े चलने लगे। इस तरह से सुदर्शन चक्र के बताए हुए मार्ग से जाते जाते अंधकार के अंतिम सीमा पर, जहाँ किसी की पारवार नहीं है, वहाँ भगवान पहुँचे और वहाँ जाकर देखे बहुत सुंदर महल है, बहुत सुंदर शोभा प्राप्त कर रहा है। उस महल में भगवान शेष विराजमान है, उनके सहस्त्रों शिर है, सुंदर मणियाँ जगमगा रही हैं। अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमय शैया पर परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है, तो जा करके आठ भुजाएं हैं, घुंघराली अलके हैं, गले में कस्तुमाला है, उन्हें देख करके अर्जुन चकित हो गए। नंद सुनंद आदि पार्षद, चक्र सुदर्शन सब मूर्तिमान होकर सेवा कर रहे हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने उस स्वरूप को, उस अनंत स्वरूप को प्रणाम किए। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए, लेकिन भगवान के प्रणाम करने के बाद वो भी प्रणाम किए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मादिक लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष मुस्कुराते हुए मधुर और गंभीर वाणी से बोले, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ब्राह्मण के बालक को अपने पास मंगा लिया है। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र मेरे पास आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर नारायण हो, यद्यपि तुम पूर्ण काम सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। इस प्रकार भूमा पुरुष भगवान के पास बोल रहे हैं और इसके बाद ये लोग उनको प्रणाम किए और फिर आनंद के साथ ब्राह्मण के बालक को दिए। ठीक है, आप लोगों का आना बहुत अच्छा हुआ, हम दर्शन करना चाहते थे, तो जिस रास्ते से भगवान आए थे फिर उसी रास्ते से द्वारिका लौट। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे, उनका रूप और आकृति वैसी थी जैसे उनके जन्म के समय। उन्हें भगवान कृष्ण और अर्जुन उनके पितरों को सौंप दिया, उनके पिता के पास, ब्राह्मण के पास लाकर सौंप दिए। और उनको अपने बच्चों को देख कर उस ब्राह्मण को आश्चर्य की सीमा नहीं रही। भगवान कृष्ण के कृपा का फल है, वो समझ गया ब्राह्मण, साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के मनोरथ को पूर्ण किए, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा करते हैं। बहुत से अधर्मी राजाओं को मारे, बहुतों को अर्जुन से मरवाए, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर एवं धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म की मर्यादा की स्थापना करा दी। तो भगवान इस प्रकार इस पृथ्वी पर लगभग 129 वर्ष तक रहे और इसी प्रकार अमानुषिक अलौकिक लीला करते रहे। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के अब अंतिम अध्याय में भगवान के मधुर बिहार लीला का वर्णन करते हुए कृष्ण लीला को संपन्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, द्वारिका नगरी की छटा अलौकिक थी। सुंदर सड़कें, मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों के भीड़ से सदा सर्वदा ही भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन उद्यान लहरा रहे हैं, पात के पात वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उस पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। नगरी बहुत सुंदर संपत्तियों से भरपूर थी। और जगत के श्रेष्ठ वीर जदुवंशी उसका सेवन करते थे, सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियां वेशभूषा से विभूषित रहती थी, उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि खेल खेलती तो उनका कोई अंग कभी दिखता तो ऐसा मालूम पड़ता मानो बिजली चमक रही हो। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारिका थी जिसमें वे निवास करते थे, जैसा वर्णन हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के साथ विहार करते थे। 16,108 सुप्रसिद्ध पत्नियां हैं भगवान की, उनके साथ भगवान विहार करते थे। और सभी पत्नियों के महल में सुंदर सुंदर सरोवर, सुंदर जल और विविध प्रकार के फूल, विविध प्रकार के पक्षी, सभी तरह के साज समाज सब जगह था। और भगवान कभी कभी उन सरोवरों में अपने पत्नियों के साथ विहार करते, खेलते और कभी कभी आपस में हंसते हंसते पिचकारियों से खेलते थे। बहुत आनंदमय लीला भगवान किए अपने महिषियों के साथ। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उस समय भगवान पत्नियों के साथ जब विहार करते थे और पिचकारी से भिंगो देते थे तो मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल, जांघे, अंग, वस्त्रों के भींग जाने से झलकने लगते थे और उनके चोटियों के गुथे हुए फूल गिरने लगते थे। कभी कभी वे अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती और इस बहाने बहुत प्रसन्न होती, उनका मुखमंडल खिल जाता और ऐसे अवसर पर उनकी शोभा और बढ़ जाती। इस प्रकार भगवान अपने पत्नियों के साथ विहार करते, विविध प्रकार के विहार लीला का वर्णन है। कभी सरोवरों में जल विहार, कभी पिचकारी के साथ खेलना, कभी बैठकर हंसी मजाक करना और कभी नाचने वालों के साथ उनका नृत्य देखना, गान सुनना और उनको विविध प्रकार के उपहार देना, इस प्रकार से भगवान विहार करते थे। उनकी चाल, बातचीत, चितवन, हास, विलास, आलिंगन आदि से उन रानियों की चितवृत्ति हमेशा खींची रहती थी और उन्हें और किसी बात का स्मरण ही नहीं रहता, केवल भगवान के विषय में ही सोचती रहती थी। रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान कृष्ण थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में सदा डूबी रहती थी। कभी कभी तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती थी और न जाने क्या क्या कहने लगती थी। कभी कभी महिषियां आपस में विविध प्रकार की बात करने लगती थी, भगवान के सामने भी इस तरह की बात करती थी। कुछ को सुखदेव गोस्वामी यहाँ रखते हैं। रानियां कहती, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई, संसार में सब और सन्नाटा छा गया। देख इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपा कर सो रहे हैं, तुझे नींद नहीं आती है क्या? इस तरह रात भर जगकर विलाप क्यों कर रही हो? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह बिंद तो नहीं गया है? अरे चकवा, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस तरह करुण स्वर से पुकार रही हो? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे समान भगवान की दासी होने का भाव चढ़ गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपने चोटियों में धारण करना चाहती है? कुछ भी बोल रही हैं। अभी समुद्र को संबोधित करके कहती है, ओ समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती है क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है, परंतु नहीं नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गंभीर आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं क्या? यही बात है। हे चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज यक्षमा हो गया है, इससे तुम इतने क्षीण हो रहे हो। राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता में तुम मौन हो रहे हो? अरे मलया नील, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल हो चुका है। अरे मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा है, अवश्य ही तुम जदुवंश शिरोमणि भगवान के प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम बस में बंध कर उनका ध्यान कर रहे हो। तुम्हारा हृदय चिंता से भर गया है, तुम अत्यंत उत्कंठित हो, तभी तो बार बार उसकी याद में हमारी ही तरह आंसू बहा रहे हो। अरे कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोली है, जो प्यारे के बिरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी बोली। हे पर्वत, तुम तो बड़े उदार हो, तुमने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। न तुम हिलते डोलते हो, न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है कि जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी है, वैसे ही तुम भी दुबली पतली हो गई हो। अरे हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझती है कि तुम उनके दूत हो। किसी के बस में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल है ना? अरे भैया, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें यह बात याद है?
हे महाराज, इस प्रकार कृष्ण पत्नियां जोगेश्वर भगवान कृष्ण के विषय में अनन्य प्रेम भाव रखती थीं और इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं अनेक प्रकार से अनेकों के द्वारा गान की गई है। इतनी मधुर है, इतनी मनोहर है कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खींच जाता है। फिर जो स्त्रियां उनको देखती हैं नेत्रों से, जो बात करती हैं, आलिंगन करती हैं, उनकी क्या दशा हो सकती है? जिन बड़ भागिनों ने जगत गुरु भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरणों को सहलाया है, उन्हें नहलाया है, खिलाया है, पिलाया है, तरह तरह की सेवा की है, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। उन 16,108 रानियों में 8 विशिष्ट हैं। उनके पुत्रों का वर्णन पहले हो चुका है। प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री भगवान प्राप्त किए। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 सुप्रसिद्ध हैं, जो महारथी थे, जिनका जस सारे जगत में फैला हुआ था। उनका नाम सुखदेव गोस्वामी रख रहे हैं। भगवान के हजारों पुत्र थे, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र प्राप्त किए थे। 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र, उनमें 18 प्रधान पुत्रों का नाम सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्र भानु, ब्रीक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। और इन पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ थे प्रद्युम्न जी। और वो महारथी प्रद्युम्न और रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया और उसी के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध जी भी बहुत बड़े बलवान थे, अतिरथी थे, महान थे। और रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपने नाना की पोती से विवाह किया, उसी के गर्भ से वज्र का जन्म हुआ, वज्रनाभ। और ब्राह्मणों के साप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो गया, फिर भी वो वज्र बचे रहे, वज्रनाभ। तो वज्रनाभ के पुत्र हुए प्रतिबाहु, प्रतिबाहु के सुबाहु, सुबाहु के शांतसेन और शांतसेन के सतसेन। इस प्रकार एक वंश परंपरा की चर्चा करते हैं सुखदेव गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वज्रनाभ, प्रतिबाहु, सुबाहु, शांतसेन और सतसेन। हे महाराज परीक्षित, इस वंश में कोई ऐसा पुरुष नहीं हुआ जो बहुत से संतान वाले न हो, तथा निर्धन हो, अल्पायु हो और अल्प शक्ति वाले हो। सभी ब्राह्मण भक्त थे, सभी यशस्वी थे, पराक्रमी थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में यदुवंशियों की बच्चों की संख्या कितनी होगी अनुमान किया जा सकता है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ 1 नील लगभग सैनिक थे। ऐसी सुप्रसिद्ध बात है कि प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए, वे ही मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। तो उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने यदुवंश में अवतार लिया।
उनके कुलों की संख्या 100 थी। तो इस प्रकार भगवान अनर्थ देश में जदुवंशियों के साथ निवास करते थे और जदुवंशियों का चित भगवान कृष्ण में लगा रहता था। उन्हें सोने बैठने घूमने फिरने बोलने खेलने नहाने धोने किसी काम की कोई सुध ही नहीं रहती, सर्वदा भगवान के विषय में सोचते रहते। वे जानते ही नहीं थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है, उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। हे महाराज, भगवान का चरण धोवर गंगा अवश्य समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ही जदुवंश में अवतार ग्रहण किए तब तो गंगा की महिमा अपने आप ही उनके सुजस तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उसने उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं सबके संस्थापक भगवान कृष्ण हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप सुदर्शन चक्र लिए रहते हैं। हे महाराज, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतारते हैं, यह कौन बड़ी बात है। पृथ्वी के भार उतारने के लिए भगवान आए, इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान के नाम ही अमंगल को दूर करने वाला है। वे अपने एक चक्र से ही सारे असुरों का संहार कर सकते हैं, लेकिन आनंद लीला के लिए, आनंद विहार के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लिए और दिव्य लीला का संपादन किए, जिनके लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, सुखदेव गोस्वामी जिसका गान कर रहे हैं। तो इस प्रकार परम पावन जस का विस्तार भगवान किए। सुखदेव गोस्वामी इसी क्रम में कहते हैं, जयति जन निवासो देव की जन्म बादो जदुवर पर्षत स्वयी दुर्भीरस्यन धर्मम स्थिर चर ब्रज नग्न सुस्मित श्री मुखे न ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन काम देवम। भगवान कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते हैं, उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। हे महाराज, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रज स्त्रियों और पुर स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं, उन्हीं की जय हो जय हो। मर्तस्तयानुसव मेधि तया मुकुंद श्रीमत कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति तद्धाम दुस्तर कृतांत जवापवर्गम ग्रामाद बनम क्षिति भुजो पियूर्य दर्था। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज, जो मनुष्य प्रति क्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण कीर्तन और चिंतन करता है, उसकी यही भक्ति उसे भगवत धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह काल वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा किए, इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का श्रवण करना ही चाहिए। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य लीला का वर्णन किए, 90 अध्याय में भगवान कृष्ण के लीलाओं का गुणगान किए और अंत में श्रोताओं के समक्ष भगवान के कथा सुनने की महिमा को बताते हैं और एक आदेश देते हैं कि यह भगवान की लीला कथा श्रवण करना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। श्रोताओं का कर्तव्य है कि भगवान की लीलाओं का श्रवण करें और अपनी चित्तवृत्ति भगवान में लगावें। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। जय श्री राधे।